ਪੜੋਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੜੋਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੋ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਖੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ
खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से हम आपको रेडियो प्रोग्राम मसीह की आवाज़ वॉइस ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक क्राइस्ट आर किंग लूथरन चर्च मिसिसागा के ताबुन से पेश किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम की बदौलत आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है और ये आपकी जिंदगी के लिए बाबरकत साबित होगा। प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। आज के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
रेडियो प्रोग्राम जो है लास्ट प्रोग्राम है और हम तमाम उन अजीजों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस प्रोग्राम को सुनते रहे, हमें दुआओं में याद रखते रहे और हमें डोनेशन देते रहे इस रेडियो प्रोग्राम को ताकि हम आपकी खिदमत में खुदा उनके कलाम को पेश कर सकें। इसके मुतालिक भाई साहब हमें थोड़ा बताएंगे, लेकिन आज फरवरी की 25 तारीख है और आपका होस्ट कमल डीन और जनाब पादरी जेम्स लूक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वंस अगेन हमारी दुआ है कि खुदा आपको, हम सबको अपने परों के साए के नीचे रखे और आपके घरों में खुशियां और खुशियां और प्यार मोहब्बत और ईगानगत बढ़ाए। आप प्रोग्राम को www.masikiawaz.ca पे सुन सकते हैं और हमसे रابطہ कर सकते हैं। अगर हमसे आपने रابطہ करना हो तो connect@masikiawaz.ca और पास्टर जेम्स लू का टेलीफोन नंबर है 416-454-2581 और मेरा टेलीफोन नंबर 647-339-0397। अगर प्रोग्राम के बाद आप बात करना चाहें तो आप जरूर पैगाम के हवाले से भाई साहब से बात कर सकते हैं या कोई और प्रोग्राम
के
तो आप
से भी रابطہ कर सकते हैं,
लेकिन
इससे मतलब आने वाले
प्रोग्राम और आप हमसे जरूर जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले मतलब और किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वहां के मतलब भी आगाही करते रहेंगे। तो इससे पेश करके हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं पाई साहब से दरख्वास्त करूंगा कि दुआ में शुरू करें ताकि हम इस प्रोग्राम को शुरू कर सकें और खुदा उनकी पाक मर्जी से फिर आपकी खिदमत में जब उसकी मर्जी होगी हाजिर होंगे। जी पाई साहब,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जहन जो है वो आलम बारफा लगाए, खुदा से रابطہ कायम करें। खुदा खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्र करते हैं एक और खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम जिंदों की जमीन पे कायम रह सके। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं अपने मुल्क कनाडा के लिए जिसमें हम आराम और चैन की जिंदगी गुजारते हैं। अरे खुदावंद खुदा हम शुक्रगुजार हैं अपने स्टूडियो के लिए जिसके वसात से ये प्रोग्राम जो है लोगों तक पहुंचता है। आए खुदा उनके स्टाफ के लिए हम बहुत बहुत बरकत चाहते हैं। खुदा हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम सुनने वालों के लिए जो इस वक्त अपने रेडियो और कंप्यूटर ऑन करके तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। मेरे पास नाम के जरिए برکتوں سے مانگ خداوند ہم دعا کرتے ہیں ان تمام کمزوروں اور بیماروں کے لیے جو کہ آئے خداوند خدا جنہوں نے خصوصاً اپنے نام ہمیں دے رکھے ہیں اے خدا بہت سارے تو نے لوگوں کو اچھا کیا ہے تو نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب تندرست ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ تندرست نہیں ہیں اے خدا ہم شکر گزار ہیں اس بھائی کے لیے جس کے لیے اے خدا خدا ہم نے دعا کی ہے اور اس کے آفٹر بگ ہارٹ سرجری وہ شفا پا گیا اس بچے کے لیے راہیل کے لیے جو ٹیکسلا پاکستان سے ہے اس کے لیے شکر گزار ہے عدنان کے لیے شکر گزار ہے جو مینچیسٹر یو کے سے ہے ایشر محمود کے لیے شکر گزار ہیں جو کہ ٹیکسلا پاکستان سے ہیں کملا کمال کے لیے ہم شکر گزار ہیں جو کہ ٹورانٹو سے ہیں لیکن اے خدا خدا ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی کمزور یا بیمار ہیں اے خدا ہم ان کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اے خدا ان کو اپنا شفا والا ہاتھ جو ہے وہ ان کی طرف بڑھا کیونکہ تیرا نام شافی نام ہے تیرے نام میں شفا پائی جاتی ہے خدا ہم اس بہن کے لیے جو ایج ایکس میں ہیں ان کی بیٹی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خصوصاً انہوں نے ہمیں فون کر کے یہ کہا کہ اس کے لیے دعا کی جائے اے خدا ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کاشف انور کے لیے جو لاہور پاکستان سے ہیں اے خدا ان کی فیملی سنگم مسکان سائمہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کین کامران کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو سویئر آٹزم میں ہے اور جو یونائٹڈ کنگڈم سے ہے اے خدا اس کے لیے دعا کرتے ہیں آیت علی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ بچی 3 سال کی بچی جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی 3 سرجریز ٹورانٹو میں ہو چکی ہیں آئے خدا ان کے لیے ان پہ رحم کر اور نسرین کے لیے دعا کرتے ہیں جو کراچی پاکستان سے ہیں ان کی بینائی کے لیے آئے خدا ان تھرو کو آئے خدا جمی دین کے لیے دعا کرتے ہیں آئے خدا خدا جبکہ وہ ہاسپٹل میں ہیں آئے خدا خدا بخشتے تھے اس کو بہتر کرتے ہیں اسی طرح سے ہم دعا کرتے ہیں پیسٹر بیزل کے لیے پیسٹر بیزل کرسی جو کرائسٹ آرکن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی آئے خدا خدا ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے ان پہ بھی رحم کر مرسی دین کے لیے دعا کرتے ہیں جو یو ایس اے سے ہیں آئے خدا خدا ان کی تکلیف کو بھی بالکل دور کرتے ہیں یہ تمام دعائیں آئے خدا تیرے حضور میں لاتے ہوئے تیرے پاک نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں خدا ان یسوع مسیح کے مقدس نام میں آمین
آمین مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں کیونکہ تیرا ہاتھ رات بھاری تھا میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے یقیناً جب سراب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا تو میرے چھپنے کی جگہ ہے تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا میں تجھے صلاح دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی اور جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی اے صادقو خداوند میں خوش و خرم رہو اور اے راست دلو خوشی سے للکارو خداوند اپنے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے آمین سامعین آئے خوبصورت گیت سنتے ہیں اور پروگرام کو پھر آگے بڑھاتے ہیں.
Often find yourself sidetracked by.
سامین آپ نے خوبصورت گیت سنا اور آج کا جو میسج ہے پائی صاحب نے جو تھیم لی ہے وہ ہے سینٹ پیٹرز کنفیشن, مقدس پترس کا اقرار. تو ہم خداوند کے خادم سے آج کا پیغام سنتے ہیں کہ جب پترس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا
یا خداوند کے سامنے, تو ہمیں بھی اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کی نزدیکی میں بڑھتے جائیں. تو آج سنتے ہیں پادری صاحب سے کہ خداوند کا کیا پیغام وہ ہمارے لیے لے کے آئے ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ پادری صاحب کو روح القدس سے خداوند بھرے تاکہ آج کا پیغام ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. جی پادری صاحب.
جی بہت شکریہ. جو لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ان کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ریڈیو پہ, زوم پہ, فیس بک پہ جڑے ہوتے ہیں, اور میں شکر کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو کے لیے کہ جن کی مدد سے یہ پروگرام جو ہے یہ دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچا ہے. لیکن ہر چیز کا ایک شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے. آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, بڑے افسوس سے بتانے جا رہا ہوں کہ ہم یہ ہمارا ریڈیو AM 770 ٹورانٹو سے آخری پروگرام ہے, اور اس کے بعد ہم ریڈیو پہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ نہیں کہ ہم گھر چلے جائیں گے, لیکن ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے دوسرے میڈیا کی وساطت سے, جیسے فیس بک ہے, جیسے زوم ہے, جیسے یوٹیوب ہے, اس کے ساتھ ہم جڑے ہوں گے. تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے, جو کہ آپ کو بتائی جاتی ہے ہر دفعہ, یعنی کہ www.masihkiawaz.ca masihkiawaz.ca, اس کی فیس بک کو آپ کلک کریں, اپنی فیس بک آن رکھیں تاکہ آپ کو امیڈیٹلی پتہ چل جائے گا کہ ہم کس پلیٹ فارم پہ, کس کس پلیٹ فارم پہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور کیا وقت ہوگا. ظاہر ہے یہ تو یہ صبح کا وقت نہیں ہوگا, غالباً ایسا وقت ہوگا جب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اٹھ گئے ہوتے ہیں. اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری فیس بک جو ہے اس کو آپ لائک کریں, وہاں پہ گھنٹی ہوتی ہے اس کو آپ اس پہ آپ کلک کریں تاکہ آپ کو انٹیمیشن جو ہے وہ ہمارے پروگرام کی امیڈیٹلی مل جائے. جب بھی ہم لائیو جائیں, جس وقت بھی جائیں, آپ کو امیڈیٹلی وہ انٹیمیٹ ہو جائیں گے آپ. سو اس لیے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اور میں بہت سارے لوگوں کو ملتا ہوں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں بھی ایلڈر صاحب بھی ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا پروگرام سنتے ہیں. لیکن آپ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب اس پروگرام کو سنتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنے کامنٹس بھیجا کریں, یا ہمیں فون کیا کریں, یا ہمیں ای میل کیا کریں, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون کون ہمارا پروگرام سن رہا ہے. مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سنتے تو ضرور ہیں لیکن وہ رسپونڈ نہیں کرتے. لیکن آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر یہ پروگرام اچھا لگتا ہے یا برا بھی لگتا ہے تو ضرور کامنٹ کریں, تاکہ ہماری ہم جو ہیں ہم صبح صبح جو ہیں آپ کے ساتھ پچھلے 13 سال سے جڑے ہوئے ہیں, تاکہ ہم جو ہے ہماری حوصلہ افزائی ہو, ہمیں ہم امپروومنٹ کر سکیں, ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیں. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, کسی نہ کسی ملٹی میڈیا پہ رہیں گے, فیس بک پہ رہیں گے, زوم پہ رہیں گے, یوٹیوب پہ رہیں گے. سو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بات ہم پھر ایک دفعہ یہ اناؤنسمنٹ کریں گے ٹورڈز دی اینڈ آف دی پروگرام. لیکن اس وقت ہم جو ہے وہ خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. جو آج کا جو میسج ہے وہ ہے مقدس پترس رسول کا اقرار, یعنی کنفیشن آف سینٹ پیٹر. اور یہ کنفیشن اس لیے ہم بات کریں گے اس پہ کیونکہ ہم اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہمیں کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ نے اس گیت میں سنا کہ میری خطاؤں کو معاف کر, ہم اپنے دل سے جب خدا کے پاس اپنی خطاؤں کو لے کے جاتے ہیں تو ہمارا خدا جو ہے محبت کرنے والا خدا ہے جو ہمیں معاف کرتا ہے. سو तो मेहरबानी से बहुत गौर से सुनिएगा। और सबसे पहले कि हम आगे चलें, मैं एल्डर साहब से दरखास्त करूंगा कि ये मुकद्दस बाइबल का हिस्सा पढ़ें जो मरकस रसूल की इंजील में है, उसका नौवां बाब, मरकस रसूल की इंजील उसका नौवां बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर और हम सुनेंगे ग्यारहवीं आयत।
पर सब आपने पहले मरकस आठ बाब कहा था, 27 से 38 आयत तक,
मरकस आठ बाब
27 से 38
वाला बाब, ठीक है
ठीक है
ठीक है, मरकस आठ बाब 27 से लेके और यस
बाप के आखिर तक,
बाप के आखिर तक चलें, ठीक है वो ठीक है,
वो ठीक है। इसमें पतरस का ऐलान है इकरार करने का और यीशु अपने दुख उठाने और मरने की बाबत बात करते हैं। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और बाज एलिया और बाज नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीन दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी और अंजील की खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया का हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? क्योंकि जो कोई इस जनाकार और खताकार कौम में मुझसे मेरी बातों से शर्माएगा, मैं इब्ने आदम जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। खुदावंद अपने जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन
आमीन।
भाई साहब आपकी तस्वीर
जी, आपने अभी ये पैसेज सुना है जो मरकस रसूल की आठवां बाब और उसकी 27 आयत से लेकर और 38 आयत तक हमने सुना है कि यहाँ पे होता क्या है कि लिखा हुआ है कि फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। हमने ये जगह देखी है जहां पे ये गांव है, ये गांव नहीं था, ये एक शहर था। और उन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो वहां पे पहुंचते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आप अगर आप ज्योग्राफी से वाकिफ हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज जो है वो उन्होंने वो झील के किनारे जितने थे, जैसे कफरनहूम था, वहां से शुरू किया था। लेकिन अब ये कैसरिया फिलिप्पी जो है ये कहां पे है? ये बिल्कुल नॉर्थ में है, वहां से आगे सीरिया शुरू हो जाता है, लेबनान शुरू हो जाता है। और अगर आप और वहां पे वो पहाड़ है जो पहाड़ जिसको के हरमोन का पहाड़ कहा जाता है या उसको हरमन भी कहा जाता है। ये देखें कि ये गर्मियों में भी ये पहाड़ जो है ये बर्फ से लदा होता है। और हम जानते हैं कि यहां पे खुदावंद यीशु मसीह पहुंचे हैं और जब यहां पे पहुंचे हैं तो उन्होंने अपने और यहां पे जाके उन्होंने ये सवाल किया है अपने शागिर्दों को और वो सवाल क्या है, वो सवाल यह है कि अपने शागिर्दों को कहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो, पहले वो सवाल करते हैं लोग मुझे क्या कहते हैं। सो उन्होंने क्या कहा, और राह में उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और बाज एलिया और बाज नबियों में से कोई। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अब ये जानते थे कि ये खुदामंद यीशु मसीह जो इस तरह के मौजज़ात करते हैं, जो कि उनके बीमारों को अच्छा करते हैं, जो उनके लोगों में से बदरूहें निकाल देते हैं और जो यहां तक कि उनके मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं, ये कोई स्पेशल आदमी है। और ये आदमी जो स्पेशल है इसका नाम यीशु मसीह है, गो के वो उन्हीं लोगों में से थे, लेकिन हम जानेंगे, यही जानेंगे कि वो जो है वो इसीलिए उन्होंने ये सवाल किया है। और ये सवाल उन्होंने क्यों किया है वहां पे, ये बड़ी गहरी बात है जो हमें समझने वाली है। और वो इसलिए सवाल किया है क्योंकि वहां पे बिल्कुल हमने ये जगह देखी है, जैसे कि वो लोग जो फेसबुक पे हैं या जूम पे हैं वो देख सकते हैं कि वहां पे एक देवी थी जो कि ग्रीक गॉडेस थी और उसका नाम पेनियस था। और पेनियस जो है वो पेनियस, उसको द गॉडेस ऑफ पैन भी कहा जाता है। और वो गॉडेस जो थी उसकी, उसका वहां पे एक तरह से मंदिर था। और वो मंदिर जो था, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पूछा है, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत सारे ना खुदाओं पे बिलीव करता है, वो ऐसी बातों पे बिलीव करता है, क्योंकि कोई भी बात जो है इंसान की समझ से बाहर होती है तो वो क्या करता है, उसको खुदा मान लेता है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये सवाल किया है कि भाई तुम हर तरह के मेरे क्या क्या मौजज़ात तो देखे हैं तुमने, अब तुम ये बताओ कि मैं कौन हूं। यहां पे खड़े हुए बिल्कुल ये जो मंदिर है देवी का, जिसको पैन का मंदिर कहा जाता है, और ये देवी जो थी वो इसको, ये देवी को वो मानते थे, ये लोग ये बुतों की पूजा करते थे। आपको मालूम है कि आज भी लोग बुतों की पूजा करते हैं और वो बड़ा कुछ मानते हैं कि ये बुत क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि लकड़ी के बुत हों या पत्थर के बुत हों या किसी चीज के भी बुत हों या आपके ख्याली बुत हों जो आपके आपके दिमागों में हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ खुदा जो है, जो जिंदा खुदा है, उसके साथ जब आपका ताल्लुक होता है तो वही आपको बचा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब मैं अपनी खताओं को मानूं तो तू मुझ पे रहम करेगा। और ये देवी जो है, जिसको के देवी पेनियस की देवी या पैन की देवी कहा जाता था, ये एक ऐसी देवी थी जिसका पिछला हिस्सा जो था वो एक तरह से बकरी का था, बकरी का था। अगर आप उसको इंटरनेट पे पढ़ें उसके मुतालिक, तो आपको मालूम होगा कि ये जो देवी थी, यहाँ पे कहा जाता था, मुझे अभी तक याद है कि हमारा गाइड जो था, जो हमें यहाँ पे लेके गया था, उसने ये बताया था कि यहाँ पे ये जो वार सी नजर आती है, यहाँ पे वो बकरियां या मेढे फेंकते थे इस पानी में, और अगर वो पानी में गायब हो जाता तो इसका मतलब है कि देवी ने उस कुर्बानी को कबूल कर लिया, लेकिन अगर वो फ्लोट करके ऊपर आ जाता तो वो कहते थे कि देवी ने अब उस कुर्बानी को एक्सेप्ट नहीं किया। सो ये देवी जो है, ये इस तरह से यहाँ पे इंटरनेट पे हमें दिखाई गई है कि आपको ये देवी जो है, ये फर्टिलिटी की देवी भी कहा जाता था, कि इसकी वजह से जो है इसको फर्टाइल आदमी हो जाता था। लेकिन ये सब की सब तोहमात थी, ये सब के सब इंसान के ख्यालात हैं जो उसको इस तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह, जैसे आजकल हम ये देखते हैं कि ये देवी जो है, ये उसकी उसका हमें यहाँ पे मंदिर था, और ये जो जगह है जहां पे ये आपको दो शख्स नजर आ रहे हैं, यहां पे फिलिपस का महल था। फिलिपस जो था वो हेरोद ग्रेट का एक बेटा था। आपको मालूम होना चाहिए कि उसके चार बेटे थे और चार बेटों पे जब हेरोदीस जो ग्रेट है, जिसको बड़ा हेरोदीस कहा जाता है, उसने फिर सारे इसराइल को चार हिस्सों में तकसीम करके अपने चारों बेटों को वहां पे उनको हुक्मरान कर दिया था। और ये जो नॉर्थ है, एक्सट्रीम नॉर्थ है इसराइल का, ये तकरीबन वहां से कफरनहूम से 25-30 मील नॉर्थ में है। मैं जैसे बताया था कि यहां से इसराइल जो है खत्म होता है और लेबनान शुरू हो जाता है, सीरिया शुरू हो जाता है। और हमने वो देखा है, ये सारी जगह जहां पे ऐसा हमें नजर आता है। सो ये कॉन्टेक्स्ट है इस वाक्य का कि खुदावंद यीशु मसीह ने वहां जाके उनको क्यों ये सवाल पूछा है। एक और बात आपको मैं याद दहाना कराना चाहूं कि आगे चढ़ के आप नौवें बाप में, जब नौवें बाप की आगे दो से आगे पढ़ते हैं, तो हमें मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, अब जब यहां पे उन्होंने सवाल पूछा है, कहां वो और यूहन्ना और पत्रस, ये खुदावंद यीशु मसीह जो है उनको याकूब को लेके, तो ये माउंट हर्मन पे गए। माउंट हर्मन में आपको बताया है कि बहुत ऊंचा पहाड़ है, और यहां पे जाके उनकी छवि जो है वो नूरानी हो गई। पहले तो बिल्कुल एक इंसान लगते थे, लेकिन जब वो इस पहाड़ पे गए हैं तो हमें मालूम है कि मूसा से जो 1000 साल तो 2000 साल पहले थे उनसे, और एलिया जो 800 साल पहले थे उनसे भी मुलाकात होती है। और वहां से जब वापस आते हैं खुदावंद यीशु मसीह, और वहां पे भी वही आवाज आती है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की उस वक्त आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब ये तमाम बातें जो हैं ये इलाही बातें हैं, ये सुपरनेचुरल बातें हैं जो हमें खुदावंद यीशु मसीह में मिलती हैं कि वो किस तरह के आदमी थे। क्योंकि वो आदमी नहीं थे सिर्फ, वो मुकम्मल इंसान हैं और मुकम्मल खुदा है। अब ये बात जो है लोगों के लिए बड़ी कुफर की बात लगती है, लेकिन मैं तो ये बात नहीं कहता, ये खुदा ही कहता है अपने कलाम के जरिए से कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक आम इंसान नहीं है। वो एक आम इंसान नहीं है, गो के वो मुकम्मल इंसान है, लेकिन वो मुकम्मल खुदा भी है। क्योंकि खुदा ही, आपको पता है कि जो आपके कसूर या आपके गुनाह जो है वो सिर्फ खुदा ही माफ कर सकता है। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानों के जो गुनाह हैं वो माफ किए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ही लाजरस को भी जिंदा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने ही वो बदरूहों को निकाला है। तो आप क्या कहेंगे अगर आप ऐसी देवी को मानते हैं जिसमें कोई ताकत नहीं है? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ख्यालात को जरा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मबजूल करें, और वहां पे हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इसीलिए कहा था। अब खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है वो तकरीबन 9 महीने की रह गई है, और 9 महीने के बाद, अब इसके बाद जो है वो यरूशलेम की तरफ रवाना होंगे और उनको सलीब किया जाएगा। आजकल हम रोजों में से गुजर रहे हैं, आप जानते हैं, और ये रोजों का मतलब ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को याद करें, और खुदावंद यीशु मसीह वो सलीब की तरफ हम भी चलें, ताकि हम वहां पे जाकर देखें कि क्या होने वाला है। हमें मालूम है कि हम बताएंगे आगे चल के आपको मुख्तलिफ मीडिया के जरिए से कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पे चढ़ते हैं तो उनकी मौत वाकया हो जाती है, उनको सलीब दिया जाता है, उनकी मौत वाकया हो जाती है, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं और वो मौत पे फतह हासिल कर लेते हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, क्या आप ऐसी शख्सियत पे यकीन नहीं करेंगे? क्या आप ऐसी शख्सियत पे ईमान नहीं लाएंगे? मैं कहता हूं कि आपको मैं इसीलिए ये सोचने पे मजबूर कर देता हूं कि अगले दिन मैं परसों ही मैंने एक जनाजे के ऊपर वहां पे मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया था और उनको कहा था कि देखो हर इंसान ने मरना है और हर इंसान जो मरने के बाद जो है वो उसकी दो ही चॉइसेस हैं। वो चॉइसेस क्या हैं? या तो वो जहन्नुम में जाएगा या वो जन्नत में जाएगा। सो मैंने सबको कहा कि हम सब ने मरना है, हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमने कहां जाना है। और वो हमने यही बात उनको कही तो एक शख्स मुझे मिला, उसने कहा तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं आपको आज सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये सवाल जो पूछा है अपने शागिर्दों से कि तुम मुझे क्या समझते हो, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। और इसको इसीलिए पीटर्स कन्फेशन कहा जाता है, पत्रस का इकरार कहा जाता है, क्योंकि पत्रस का जवाब जो है वो बड़ा सही जवाब है। पत्रस का जवाब क्या है? पत्रस को कहा, बाकी शागिर्दों ने तो अपने अपने ख्याल वहां पे कहे हैं कि उन्होंने जवाब दिया कि कुछ कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो भी बहुत बड़ा आदमी था, वो लोगों को दरियाए यर्दन पे बपतिस्मा देता था। उसके बाद में कहा एलिया था, एलिया बहुत बड़ा नबी हुआ है। आपको मालूम है कि वो बहुत पहले खुदावंद यीशु मसीह से, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक मसीहा आने वाला है और वो मसीहा जो है हमें रोमी हुकूमत से छुटकारा देगा। अब लोगों की जो इंसानी ख्यालत हैं वो तो यही सोचते हैं कि वो हमें रोमी हुकूमत से छुटकारा देगा और मसीहा जो है वो फिर से अमन पैदा करेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो सच्चे मसीहा हैं, जब वो आए हैं तो उन्होंने उनको सिर्फ रोमी हुकूमत से नहीं बल्कि गुनाहों से छुटकारा दिया है। और गुनाहों से छुटकारा देने के बाद जो असली अमन है, जो कि दायमी अमन है, जो ना खत्म होने वाला अमन है, वो उन्होंने दिया है। और इसीलिए वो जो है, इसीलिए पत्रस रसूल जो है वो बड़ा सही जवाब देते हैं। पत्रस रसूल कहते हैं, पत्रस ने जवाब में उससे कहा कि तू मसीह है। मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब होता है मसा किया हुआ। और मसा किया हुआ कौन लोग मसा किए जाते थे? प्रीस्ट मसा किए जाते थे, प्रॉफिट्स जो थे वो मसा किए जाते थे, और ये स्पेशल आदमी होते थे। इसीलिए ये मसीह जो है, इसीलिए उनको खुदावन यीशु अल मसीह कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो गुनाहों से, वो खुदावन के मसा किए हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है, ही इज द अनॉइंटेड वन, ही इज बीन अनॉइंटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। हम जानते हैं कि जब नबी मसा किए जाते थे या बादशाह मसा किए जाते थे तो वो कौन मसा करता था? वो कोई ना कोई नबी होता था वहां पे मसा करता था। हमें ये भी मालूम है कि जिस तरह से नातन नबी ने क्या किया था, अपने दाऊद बादशाह को मसा किया था। लेकिन यहां जो मसा है, यहां जो मसा खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत जब हम पढ़ते हैं, उनकी शख्सियत से हम वाकिफ हो जाते हैं, तो वो असली तौर पे वो क्या है? वो बादशाह भी हैं, वो नबी भी हैं, और वो सरदार काहिन भी है। तो वो तीनों तरीके से उनको मसा किया गया है, खुदा ने मसा किया है। और इसीलिए उन्होंने ये सवाल उनसे पूछा है कि मैं देखूं तो सही, ये शागिर्द जो हैं जिनको मैं इतनी देर से ट्रेन मैंने किया हुआ है, ये क्या सोचते हैं? लेकिन जो सही जवाब है वो पत्रस रसूल ने दिया है। मुकद्दस पत्रस रसूल जो हैं, आपको मालूम है कि उनका कितना बड़ा मकाम है, स्पेशली हमारे रोमन कैथलिक दोस्त जो हैं उनको खुदा का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। और हम जानते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं कि पोप रिप्रेजेंटेटिव है, बट वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पे पत्रस रसूल जो हैं वो ये कहते हैं कि तू मसीह है। और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह उसको बड़ी शाबाश देते हैं कि तूने सही समझा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि उनको वो तालीम देते हैं और वो बात बताते हैं जो होने वाली है। और वो होने वाली बातें क्या हैं, वो बताते हैं कि ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना, फिर उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीहों से रद्द किया जाए, कत्ल किया जाए, तीसरे दिन के बाद वो जी उठे। अब ये बात जो है ये उनकी समझ में नहीं आई उस वक्त, ये बात उनकी उस वक्त समझ में आई जब खुदावंद यसूसी को सलीब दे दिया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लेकिन यहां पे एक उन्होंने इस्तला जो है वो इस्तेमाल की है कि इब्ने आदम। अब हमारे स्पेशली मुसलमान दोस्त जो हैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाते कि ये इब्ने आदम कौन है। इब्ने आदम जो है वो एक आम आदमी नहीं है। आइए हम देखते हैं दानियल नबी की किताब, एल्डर साहब हमारे लिए पढ़ेंगे दानियल नबी की किताब और उसका सातवां बाब और उसके बाद उसकी तेरहवीं आयत, वहां पे क्या लिखा हुआ है। दानियल नबी की किताब एक ऐसी किताब है जिसको एस्केटोलॉजी कहा जाता है, जिस तरह से कि नए अहदनामे में रेवलेशन की किताब जो है वो आने वाली बातों के मुतालिक बताती है कि क्या होगा जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी तो क्या होगा। इसी तरह से जो दानियल नबी की किताब है पुराने अहदनामे की जो 2000 साल पहले लिखी गई, वो हमें बताती है कि क्या होने वाला है। और यहां पे ये जो इब्ने आदम है इसके मुतालिक लिखा हुआ है। जी पढ़े जरा।
मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जात की मानत आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत की उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी।
अब ये बड़ी मुश्किल सी उर्दू है लिखी हुई है, लेकिन आपको ये बता दूं कि खैर पाकिस्तान लोगों के लिए जो उर्दू दान है उनके लिए तो ये मुश्किल नहीं है, लेकिन जो लोग हमारे सिख भाई हैं या हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपको आसान उसमें बता देता हूँ,
जुबान में बता दे पाए साहब,
आसान जुबान में मैं बता देता हूँ कि ये जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के लिखा हुआ है कि एक आदमजात जैसा, लेकिन ये आसमानी शख्सियत है, ये रूहानी शख्सियत है, ये इलाही शख्सियत है जिसके मुतालिक दानियल नबी हमें बता रहे हैं कि मैंने उसको देखा है। अब आप कहेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह तो वहां पे थे नहीं, अब 2000 साल पहले दानियल नबी क्या ये बात कर रहे हैं और वो एंशियंट ऑफ डेज की बात कर रहे हैं, वो उस दिन की बात कर रहे हैं जो कि जमानों से भी पहले की बात है, एक आदमजात को उन्होंने देखा है। लेकिन यही तो मिस्ट्री है, यही तो भेद है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत जो है वो सिर्फ एक मुकम्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक मुकम्मल खुदा है। जहां भी आप इब्ने आदम पढ़ेंगे आप दानियल नबी की किताब को देखें कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक आदमजात जैसी शख्सियत को आप देखते हैं, एक इलाही शख्सियत को देखते हैं, एक रूहानी शख्सियत को देखते हैं। और वो शख्सियत सिर्फ एक ही हो सकती है क्योंकि खुदा एक है, इसीलिए वो शख्सियत भी एक ही है। वो शख्सियत जो है वो खुदा की सूरत है, वो खुदा खुद है जो कि इंसानी स्वरूप में आपके सामने नजर आता है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पतरस रसूल को थोड़ी सी उसको क्या एडमॉनिश भी करते हैं और इसीलिए कहते हैं क्या इस शैतान से दूर हो। आपको मालूम होना चाहिए कि वो नहीं चाहते थे कि जो पतरस रसूल कहते हैं, क्योंकि पतरस रसूल बहुत बहुत क्या कहना चाहिए जिस्मानी तौर पे बहुत एकदम से जवाब दे देते थे बगैर सोचे समझे। लेकिन जब पत्रस को उन्होंने ये देखा है, पत्रस उनको कई दफा उन्होंने पत्र से कहा कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू खुदा के प्लान को डिस्टर्ब मत कर, इसीलिए उसको कहा शैतान मुझसे दूर हो। ये वही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जब उन्होंने एक्चुअली से शैतान के लिए इस्तेमाल किए थे जब खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश हुई थी और शैतान ने उनको कहा था कि तू अगर मुझे सिद्धा करे तो मैं सारी शाना शौकत तुझे दे दूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था, आए शैतान दूर हो, यू नो ही डिड नॉट वॉन्ट दैट द प्लान ऑफ गॉड विच वॉज द प्लान ऑफ सेल्वेशन शुड बी किसी तरह से डिस्टर्ब हो। तो इस तरह से उन्होंने ये बात कही है पत्रस रसूल को, और पत्रस रसूल जो है वो ये बात समझते हैं, लेकिन शागिर्दों को ये तमाम बातें जो हैं, शागिर्द भी तो आफ्टरऑल इंसान थे, वो के खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो 24 घंटे रहते थे, लेकिन उनके समझ में ये बात नहीं आती थी जैसे आपकी समझ में नहीं आ रही हो, जैसे मेरी समझ में भी नहीं आती थी। लेकिन अब मैं जब कलाम के जरिए से जब ऐसा भी पढ़ते हैं, ये कलाम जो है जिंदा और बरहक है, मेरा ईमान जो है इस कलाम पे है कि ये खुदा का पा कलाम है, जब मैं इस पे बिलीव करता हूं तो फिर मेरी समझ में आ जाती है बहुत सारी बातें जो मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन ईमान के जरिए से मैं उनको जानता हूं कि ये, मैं देवियों मंदिरों पर यकीन नहीं करता, मैं एक जिंदा खुदा पर यकीन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ही जिंदा खुदा पे यकीन करें और ये कन्फेशन करें जो कि हमें यहां पे मिल दिखाया जाता है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान जो है वो सलीब पे इसीलिए दी थी ताकि मैं और आप बच सकें, खुदावंद का वो निजात का पैगाम जो है वो मुकम्मल हो, और वो मुकम्मल हुआ और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उसको मुकम्मल करके मुर्दों में से जी उठ के उसके बाद वो 50 दिन के बाद 40 दिन के बाद आसमान पे चले जाते हैं। और अब हमें मालूम यही बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उन्होंने फिर से आना है, वही यीशु मसीह जो यहां से गए थे वही फिर से आएंगे, वही जो उनके हाथों में वो कीलों के निशान हैं, उनके पांव में वो कीलों के निशान हैं जिसके जरिए से उनको सलीब पे गाड़ा गया, और उसी निशानों के जरिए से वही यीशु मसीह वापस आएंगे। अब उन्होंने मरने के लिए नहीं आना, अब उन्होंने अदालत के लिए आना। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आपने आज तक गौर नहीं किया था, आज मौका है जब आप पत्रस रसूल का कन्फेशन देखते हैं, उनका इकरार देखते हैं कि तू खुदा का बेटा मसीह है, तो अगर आप ये बात जो है सिर्फ यही बात कहनी है, यही बात आप बिलीव करें तो आपके गुनाह भी माफ हो जाएंगे, आप हमेशा की जिंदगी में भी दाखिल हो जाएंगे, आप जन्नत के वारिस हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपके लिए गुड न्यूज नहीं है। मैं बड़ी बड़ी ऑनेस्टली बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपको बता रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया, वो मुर्दों में से जी उठे, बहुत सारी दुनिया ने देखा, इसी तरह से सारा जहान देखेगा जब वो आसमान से आएंगे, पाक फरिश्तों के साथ आएंगे, और उन्होंने अदालत के लिए आना है। इसलिए वह आप क्या तैयार हैं, क्या आप आज मुकद्दस रसूल पत्रस रसूल के साथ ये कन्फेशन कर रहे हैं कि तू खुदा का बेटा मसीह है? बस इतना ही कहना है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आपको फर्दर कुछ बात पूछना है हमसे रब्ता कायम करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन
आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए। अब ये गीत के बाद आपसे बात करेंगे, और आप लाइव नहीं आ रहे, आपकी पिक्चर आ रही है तो जरा प्लीज आप उसे सेट कर लें, और इस गीत के सुनने के बाद मैं आपकी खिदमत पे फिर दोबारा हाजिर होता हूँ।
मेरे गुनाह कबूल यीशु ने उठा लिया मेरे गुना का बोझ, यीशु ने उठा लिया मुझको है दीन जात, मुझको है दीन जात, रब से मिला लिया मेरे गुना का बोझ, यीशु ने उठा लिया। मुझको है दीन जात, मुझको है दीन जात, रब से मिला लिया मेरे गुना का बोझ, यीशु ने उठा लिया। को छुपा के खून अपना बना लिया, मुझको छुपा के खून अपना बना लिया, मुझको है दीन जात, मुझको है दीन जात, रब से मिला लिया मेरे गुना का बोझ, यीशु ने उठा लिया। तेरी मसीहा कैसे करूं बयां, अजमत तेरी मसीहा कैसे करूं बयां, रजा की डूबने को किनारे लगा दिया, रज़ा की डूबी नहीं को किनारे लगा दिया, मुझको है दीन जा, मुझको है दीन जा, रब से मिला लिया, मेरे गुना का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुना का बोझ यीशु ने उठा लिया।
सामने एक खूबसूरत गीत सुना आपने, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, जिस तरह पतरस ने अपना इकरार किया, पादरी साहब ने बड़ी तफसील से बताया और बड़े आसान अल्फाजों में बताया कि हमें खुदावंद से इकरार करना है। आखिर में एक मिनट रह गया, पादरी साहब जो अगर आपने कुछ कहना है तो प्लीज कह सकते हैं ताकि हम इसको वाइंड अप करें। बैल की आवाज आ
जी, जी मैं यही बताना चाहता हूं कि आज ये हमारा आखिरी प्रोग्राम था रेडियो के ऊपर, लेकिन हम आप जो है दूसरे मीडिया पे रहेंगे, यानी कि हम यूट्यूब पे आएंगे, हम फेसबुक पे आएंगे,
फेस्बुक
और फेसबुक जो है वो हमारी प्रोग्राम की फेसबुक है, जिसको www.मसीह की आवाज.ca की फेसबुक है, उसको आप लाइक करें, उसको आप उस पर घंटी बजाएं ताकि आपको इमीडिएटली पता चले कि हम किस मीडिया पे आ रहे हैं। इसके बाद हम इस रेडियो स्टेशन पे नहीं आएंगे, बल्कि हम मल्टीमीडिया पे होंगे, यूट्यूब पे होंगे, फेसबुक पे होंगे, जूम पे होंगे।
जूम पे
होंगे। आईडी आपको बताई गई है, और एक दफा फिर मैं आखिरी टाइम बताता चलूं, लेकिन अगर आपको कुछ मालूम करना चाहे तो हमारे प्रोग्राम जो है आप हमसे रब्ता कायम करें। एड्रेस आपका जो फोन नंबर है 6473390397 है, ये इसकी पिक्चर आप ले सकते हैं इस स्लाइड की। 416 मेरा नंबर है 416-454-2581, और आपको ये जो जूम की आईडी है वो भी 6800107261 है, और ये आप हमारे साथ रब्ता कायम करें।
बहुत शुक्रिया फायज साहब उन तमाम अजीजों के लिए, हम दुआ करते हैं इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, जो आने वाले प्रोग्राम है इसी तरह सुनते रहें और खुदा उनके जिंदा कलाम से बरकत पाते रहें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हम इजाजत चाहेंगे और खुदा हाफिज।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر
6478724900
اپنی کمیونٹی دا سب تو وڈا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल की जी सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस से मिल जाता सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
अपने वखरे ते सुथरे लवाजमात दे नाल बनाओ अवतार दा हर पकवान खास। एहो नहीं जी, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर विच कम कीमत ते पाओ सभी कुछ। रियल कैनेडियन सुपर स्टोर वालों रमजान दी मुबारकां।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लॉ जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਲ ਸਟੇਟ ਐਜੈਕਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ $1,775 ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ 647-290-3773 यानी 647-290-3773।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन तुहानू पड़ोसी ग्रुप में शामिल होने का मौका दे रहा है ताकि तुसी शहर की पड़ोसी एसोसिएशन का हिस्सा बन सको। ए नवा प्रोग्राम तुहानू चौखे फायदे ते नवे मनसूबे बारे भी जानकारी देवेगा। नाल नाल तुसी सिटी ऑफ ब्रैम्पटन तो मिलने लाली